मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज 10 अक्टूबर 2019 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबसे, जहां तक मेरी जानकारी है, एक नए ही विषय पर बात करने जा रहा हूं। जानकारी इस मायने में कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि बहुत लंबे समय से कभी मैंने इस विषय पर कोई बात आप सबसे की हो, लेकिन फिलहाल अवसर एक ऐसा आ गया है कि मुझे लग रहा है कि नहीं, इस पर भी बात की जानी चाहिए। और यह बात इसलिए भी की जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं यह हमारे अपने जीवन से भी बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा क्या हो गया कि मुझे इस विषय को चुनना पड़ा, आइए पहले मैं आपको वह बता दूं, ताकि आप संदर्भों को सही तरीके से समझने के बाद जब इसे सुनेंगे तो शायद उसे और अच्छे तरीके से आप पकड़ पाएं। आपको मालूम है कि हमारे रक्षा मंत्री जी अभी फ्रांस गए थे और फ्रांस से भारत ने रफाल विमान खरीदा है, और जब रफाल विमान भारत को मिला तो हमारे रक्षा मंत्री जी ने बकायदे उसकी शस्त्र पूजा की, जो हमारी परंपराओं में रही है। शस्त्र देखिए, हालांकि है वो विमान, लेकिन चूंकि वो लड़ाकू विमान है तो आप उसे शस्त्र कह सकते हैं। और दशहरे के दिन ये हुआ है, और दशहरे के दिन हमारी बहुत जगह पर ये परंपरा रही है कि शस्त्रों की पूजा की जाती है। शस्त्रों की पूजा के तहत उन्होंने बकायदे, जो भी हमारी अपनी संस्कृति में या इसके जो विधि विधान है, कि चित्र भी उसके आए कि रफाल के पहियों के नीचे नींबू रखे हुए हैं, बकायदे उन्होंने तिलक किया रफाल विमान का, नारियल फोड़ा, ये सारी चीजें विधि विधान से उन्होंने की। दोस्तों, इस घटना को लेकर के देश में, या कह लीजिए कि कुछ लोगों में, अलग अलग तरीके से बातें हो रही हैं, और जिसका मैं खुद साक्षी रहा हूं, कुछ लोगों के बीच में ये बातचीत होने लगी। और उस बातचीत में दो वर्ग बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलग अलग थे। एक वर्ग का ये मानना था कि ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और ऐसा किया गया, फ्रांस में किया गया, तो ये बहुत अच्छी बात हुई, ऐसा किया ही जाना चाहिए। जबकि दूसरा जो वर्ग था, हालांकि इनकी संख्या अपेक्षाकृत थोड़ी कम थी, उनका ये कहना था कि भाई, जो लड़ाकू विमान है, एक तो वैसे ही वो मारकाट करने वाला विमान है, उसकी आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन शस्त्र तो होते ही ऐसे हैं। फिर ये था जो उन्होंने बात कही, और बल्कि अपनी जगह पर वो सही भी थे, कि भाई जो विमान है वो कोई ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है, कोई प्रकृति का द्वारा निर्मित नहीं है, उसे मनुष्य ने बनाया है, मशीनरी है, वो एक मशीन है, और मशीन का अपना एक सिद्धांत है, उसका विज्ञान होता है, उसका अपना एक तर्कशास्त्र होता है, उसके तहत उस विमान को बनाया गया है, तो अब उसकी पूजा करने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। दोस्तों, एक आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब हमारा चंद्रयान भेजा गया था तो उससे पहले भी इस तरह की रस्म निभाई गई थी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है नारियल वगैरह फोड़ने की रस्म की गई थी, ठीक है, लेकिन उसे शायद उतनी तरजीह नहीं मिली, उस पर इतनी ज्यादा बातचीत नहीं हुई। रफाल विमान के बारे में बातचीत हुई, और शायद ज्यादा बातचीत इसलिए भी हुई कि यह दशहरे के दिन हुआ। खैर, चलिए हम इसे छोड़ते हैं। जब इस पर वाद विवाद होने लगा, बहस होने लगी, और बड़ी अच्छी बहस होने लगी, तो बीच में शब्द आया संस्कृति बनाम अंधविश्वास। संस्कृति बनाम अंधविश्वास। एक वर्ग कह रहा है कि नहीं, ये हमारी संस्कृति है, राइट, और दूसरा वर्ग कह रहा है कि ये अंधविश्वास है। तो मुझे लगा कि ये दो अच्छे शब्द मिल गए हैं, संस्कृति और अंधविश्वास, इस पर मुझे थोड़ी सी बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, जो मैंने अभी आपको घटना बताई है वो केवल संदर्भ के रूप में है, इसे आप राजनीतिक तरीके से बिल्कुल भी न लें कि मैं किसका पक्ष ले रहा हूं, किसका पक्ष नहीं ले रहा हूं, किसका विरोध कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे आप बिल्कुल एक एकेडमिक बात समझें, मेरे मन की जो बात है, जो मैं समझ पा रहा हूं संस्कृति और अंधविश्वास के बारे में, केवल उसे ही आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब भी अपने अपने स्तर पर इसके बारे में विचार करें, बल्कि ज्यादा अच्छा होगा कि इस पर विचार विमर्श भी करें। तो आइए पहले हम इनके अर्थों को देख लेते हैं, जो शब्दों से हमें पता चल रहा है। अंधविश्वास, अंधविश्वास यानी कि एक ऐसा विश्वास जिसे आप आंख बंद करके स्वीकार कर लेते हैं, या एक ऐसी बात जिसके बारे में हम सोचते नहीं है। यहां आप आंख को चेतना से भी जोड़ सकते हैं, मस्तिष्क से भी जोड़ सकते हैं, जिस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं, किसी ने हमें बता दिया और हमने उसे ज्यों का त्यों मान लिया। जैसे कि कोई अंध व्यक्ति है जिनकी आंखें नहीं है, अब आप दीवाल है सामने, कह दीजिए कि हाथी खड़ा है, अब वो देख नहीं सकते हैं तो वो क्या करेंगे? ठीक है भाई, आप जो कह रहे हैं आप पर वो विश्वास करेंगे और कह देंगे कि हाँ हाथी खड़ा है। इसी तरीके से जहां हम अपनी चेतना को ड्रॉप कर देते हैं और सामने वाले की बात को मान लेते हैं, यह है अंधविश्वास। दूसरा है संस्कृति। ये संस्कार शब्द से आया है आगे, संस्कार। ये जो संस्कार हैं वे क्या होते हैं? देखिए, किसी भी देश के जो संस्कार हैं वो वहाँ के प्राकृतिक वातावरण से बनते हैं। वहाँ का जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट के तहत उसकी संस्कृति का निर्माण होता है, संस्कार उसके बनते हैं। जैसे आप देखिए कि भारत मानसूनी क्षेत्र है, नदियां हैं, तो आप देखें कि नदियों को हम क्या मान रहे हैं। नदियों को हम माँ का दर्जा देते हैं, देवी की तरह पूजा कर अर्चना करते हैं। वृक्षों को हम किस रूप में देखते मानते हैं, तो हमारा जो अपना एनवायरनमेंट था उसने हमारे अंदर कुछ संस्कार दिए और उन संस्कारों को लागू करने के रूप में हमारी संस्कृति सामने आई। अब इन दोनों में एक चीज समान है और वो समान ये है कि संस्कृति भी सदियों से चली आ रही है बहती हुई, और अंधविश्वास भी सदियों से चले आ रहे हैं इसी तरह से बहते हुए। उदाहरण के तौर पर बिल्ली ने रास्ता काटा, काली बिल्ली ने रास्ता काटा, आप अपनी यात्रा थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, कुछ अपशकुन हो सकता है, एक अंधविश्वास हो गया, राइट। या कोई बीमार पड़ गया है, बजाय इसके कि हम उसका इलाज कराएं, हम पता लग रहा है कि झाड़ फूंक करवा रहे हैं, ये एक अंधविश्वास हो सकता है। इस अंधविश्वास है, इसे हम अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन क्या सच में जैसे हम किसी की पूजा कर रहे हैं, या हमारे घर में आप देखें कि जब विवाहित होकर के कोई लड़की आती है तो कैसे आरती उतारी जाती है, कितने सम्मान के साथ उनको घर के अंदर लाया जाता है, उनके अलग अलग अपनी परंपराएं हैं। बहुत तो ये है कि बहू आई है, उसके पैर से अनाज से भरे हुए लोटे को ठोकर लगाई जाती है और वो अनाज बिखर जाता है, तो ये अलग अलग परंपराएं हैं। अब इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो देखिए कि मुझको लगता है कि इस फर्क के बाद शायद संस्कृति और अंधविश्वास में कुछ अंतर स्पष्ट हो जाए, कि जो अंधविश्वास है वो हमारे जीवन से कहीं ना कहीं सीधे जुड़ा हुआ है। जैसे हम झाड़ फूंक करवा रहे हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो हमारे जीवन को एक खतरा हो सकता है, हमें कहीं बहुत जल्दी जाना है, पहुंचना है, लेकिन बिल्ली ने रास्ता काट दिया और हम अब अपनी यात्रा को वहां रोक रहे हैं, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी कि वो हमारे जीवन गत गतिविधियों को अतार्किक बना देता है, उनमें बाधा पहुंचाता है, जबकि उसके पीछे कोई ऐसा कारण नहीं है। जबकि जो संस्कृति है वो बेसिकली जीवन जीने का एक ढंग है, वो जीवन की एक पद्धति ही है, अपने आप में आप कह लीजिए कि वो जीवन है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। बल्कि जब हम संस्कृति का पालन करते हैं तो जो हमारे संस्कार हैं, जो सदियों से हमारे अंदर पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके पालन से हमें बड़ा एक सुकून सा महसूस होता है और ऐसा लगता है कि हम अपने पता नहीं हजारों साल पहले के पूर्वजों से, उस समाज से हम जुड़ गए हैं, तो अपने आप में हम बहुत वजनी महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी जो उम्र अभी 30-40-50-60 साल की जो भी है उसे हम हजार साल तक पीछे ले जा करके अपने को उतना अधिक बड़ा बना लेते हैं। तो जो संस्कृति है अपने आप में जीवन पद्धति है। अब आप देखिए कि चलिए रफाल की पूजा कर ली गई तो उससे क्या फर्क पड़ गया, क्या हर्ज हो गया, फर्क नहीं पड़ गया कहिए, बेहतर ही होगा कि उससे नुकसान क्या हुआ। हमने अपनी संस्कृति के आधार पर उसको कर लिया, दूसरे की और कोई संस्कृति होगी तो वो दूसरे की वो संस्कृति को अपना लेगा। और दोस्तों, मैं एक बात आप सबसे और कहना चाहूंगा कि दुनिया के बहुत से देशों में मुझे जाने का अवसर मिला है। आप ये मत समझिएगा कि जो पश्चिम के राष्ट्र हैं जिन्हें हम वेस्टर्न कल्चर वाले कहते हैं, उनकी संस्कृति में ये सब चीजें नहीं है, उनकी भी लोक में ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जिन्हें देखने के बाद हो सकता है कि आप नाक भौं सिकोड़े कि यार ये कोई बात होती है क्या, लेकिन वो उनकी संस्कृति है। तो संस्कृति अलग चीज है, अलग तथ्य है, अलग तत्व है, और जो अंधविश्वास है वो बिल्कुल अलग तथ्य है। अंधविश्वास से निश्चित रूप से बचने की कोशिश होनी चाहिए और मुझे लगता है कि संस्कृति की हमेशा जीने की कोशिश होनी चाहिए। तो मित्रों, आज की लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, आप सब से इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।